आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती कौमी राजधानी में 19 मरकजों पर जारी है। भारत की काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत शमसी बिजली में 100 गीगावाट के तारीफी संगे मील को पार कर गई है। काबीना ने सफाई कर्मचारियों के कौमी कमीशन की मुद्दत में 3 साल की तौसी की मंजूरी दे दी है। अमरीका के फेडरल जज ने सियाटल में पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत न देने से मुतालिक ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगा दी है, जिससे भारत के वीजा के हामिल अफराद को राहत मिली है। टेनिस में 15 साला माया राजेश्वरन WTA मुंबई ओपन के खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में दाखिल हो गई हैं। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में शिलोंग में मुंबई सिटी FC ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को हराया। अब खबरें तफसील से। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली के लिए डाले गए वोटों की गिनती 19 मरकजों पर जारी है। इब्तदाई रुझान 24 सीटों पर दस्तयाब हुए हैं। बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पर सबकत लिए हुए है। दिल्ली के 11 जिलों में 19 मराकज कायम किए गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम ने गिनती के पेश नज़र कौमी राजधानी में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए हैं। पेश एक रिपोर्ट।
19 गिनती मरकजों पर मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस के 38 कंपनियां तैनात की गई हैं। मकामी पुलिस भी खुश उसलूबी और शफाफियत के साथ उम्मीदवारों जिला इंतखाबी अफसरान के साथ तालमेल कर रही है। स्ट्रांग रूम्स और गिनती हॉल के अतराफ कई जुमरों पर मुश्तमिल हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स सिक्योरिटी फराहम कर रही है, जबकि मकामी पुलिस इन इलाकों और दाखिले की जगहों पर तैनात है। हर एक गिनती मरकज से 100 मीटर दूर रुकावटें खड़ी की गई हैं। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट और तमिलनाडु में एरोडे हलके के जिमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। आने के लिए 36 सीटें हासिल करना जरूरी है। अब हम अपने नामानिगार सकलैन से बात करते हैं, जो बादली गिनती मरकज पर मौजूद हैं। सकलैन, इंतखाबी कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए वसी इंतजाम किए हैं, सिलसिले में ताजा तरीन जानकारी क्या है?
शबाना, वोटों की गिनती के लिए चुनाव आयोग ने पूरी दिल्ली में 19 मतगणना केंद्र बनाए हैं। मैं उन्हीं में से एक बादली के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर बने मतगणना केंद्र पे मौजूद हूँ। अगर बात करें इस केंद्र की, तो यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र नरेला, बादली, बवाना और रोहिणी के लिए गिनती शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस, अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल पूरी तरीके से मतगणना केंद्र की सुरक्षा को बनाए हुए हैं। शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह की जो आवश्यक सुरक्षा से जरूरतें उनको पूरा किया जा रहा है। इन सीट पर कुछ बड़े नाम चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे रोहिणी सीट पर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भाजपा की ओर से मैदान में है। वहीं बादली सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनावी मैदान में। शबाना,
शुक्रिया सकलेन ताजा जानकारी के लिए। अब हम अपने एक और नामानिगार अनुपम से बात करते हैं, जो महारानी बाग गिनती मरकज पर मौजूद हैं। जी अनुपम।
जी जी शबाना,
वोटों की गिनती से मुतालिक ताजा तरीन सूरत हाल क्या है?
जी शबाना, हम अभी दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय महारानी बाग से मतगणना केंद्र पर हैं। अभी कुछ देर पहले ही 8 बजे मतगणना शुरू हुई है और डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होके अभी जस्ट समाप्त होने वाली है। उसके बाद EVM खोले जाएंगे और जो डिफरेंट अलग अलग मतगणना वोटिंग सेंटर्स में जो वोट किए गए थे उसको उसकी गिनती की जाएगी। करीबन 9 बजे के बाद ही रुझान आना शुरू होगा। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस मतगणना केंद्र पर 4 विधानसभा क्षेत्रों के वोटों की गिनती हो रही है, कालकाजी, जंगपुरा, ओखला और कस्तूरबा नगर। कालकाजी में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी, भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा सांसद रमेश विदुरी और कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक अलका लांबा के बीच टक्कर है। वहीं जंगपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, भाजपा नेता और पूर्व विधायक धर्मिंदर सिंह मारवा और कांग्रेस नेता और पूर्व महापौर फराज सूरी के बीच मुकाबला है। शबाना,
शुक्रिया अनुपम ताजा जानकारी के लिए।
लोक निर्णय
दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम
8 फरवरी सुबह 9 बजे से
मतगणना की पल पल की खबर
हर सीट की सटीक जानकारी
संवाददाताओं से ताजा हाल
और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
लोक निर्णय।
मरकज ने 2022-23 से 2025-26 तक की मुद्दत के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम के मकसद से 8,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कल नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो मांग पर मबनी हुनरमंदी के फरोग पर मरकूज है और ज्यादा से ज्यादा सलाहियतें हासिल करने नीज इनके मयार को ऊंचा करने पर मजीद तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे मांग पर मबनी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल और सनत के मुताबिक तरबियत को यकजा करके पूरे मुल्क में एक हुनरमंद और मुस्तकबिल के लिए तैयार अफरादी कुव्वत की तश्कील के तई हुकूमत के अज़्म का इजहार होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चहारम प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान स्कीम इन तीनों को स्किल इंडिया प्रोग्राम की मरकजी शोबे की मखलूत स्कीम के तहत यकजा कर दिया गया है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने सफाई कर्मचारियों के कौमी कमीशन की मुद्दत में 3 साल यानी 31 मार्च 2028 तक की तौसी की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इससे सफाई सुथराई कारकुनों के समाजी उमाशी और कामकाज के हालात को बेहतर बनाने नीज सेहत के लिए मुजिर सफाई सुथराई का काम अंजाम देते हुए किसी तरह का जानी नुकसान न हो इस मकसद में मदद मिलेगी।
हमारे समाज का एक ये वर्ग ऐसा है जिस वर्ग को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए इस पे 3 वर्ष का और एक्सटेंशन दिया गया है। करीब 51 करोड़ खर्चा इस पे आएगा और जो स्ट्रक्चर है चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन मेंबर्स सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी जिससे कि वो देश भर में घूम के देश भर में सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल कर सके।
भारत ने 100 गीगावाट शमसी बिजली की सलाहियत नस्ब करके एक तारीखी संगे मील तय किया है। इस तरह काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में भारत की हैसियत एक आलमी रहनुमा की बन गई है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने एक बयान में कहा है कि कामयाबी एक मजीद साफ सुथरे और माहौल के लिए साजगार मुस्तकबिल के तई मुल्क के अहद का एक सबूत है। ये कामयाबी 2030 तक गैर रिवायती ईंधन पर मबनी तवानाई की 500 गीगावाट सलाहियत के मकसद को हासिल करने की जानिब एक अहम कदम है। ये मकसद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तय किया था। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत की तवानाई का सफर तारीखी नौइयत का रहा है जिससे तहरीक हासिल होती है। उन्होंने कहा कि शमसी पैनल्स शमसी पार्क्स और छतों पर लगाए जाने वाले शमसी प्रोजेक्ट्स जैसे इकदाम से इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत न सिर्फ खुद कफील मुल्क बन रहा है बल्कि वो माहौल के लिए साजगार तवानाई के मैदान में दुनिया को एक नया रास्ता भी दिखा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। और अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से ताजा तरीन जानकारी। देही तरक्की और पंचायती राज की वजारत ने जारी महाकुंभ मेले में अपना एक पवेलियन कायम किया है। हमारे नामानिगार की इत्तलात के मुताबिक इस पवेलियन में सरकारी स्कीमों और लाजमी सहूलियात से आरास्ता एक मिसाली गांव के मॉडल को भी पेश किया गया है। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट।
वजारत के जरिए पेश किए गए मिसाली गांव के पवेलियन में स्कूल पंचायत घर आंगनवाड़ी मुस्तकिल मकानात और महात्मा गांधी देही रोजगार गारंटी एक्ट के तहत रोजगार मौके समेत मुख्तलिफ सहूलियात को उजागर किया गया है। आकाशवाणी खबरों के शोबे से बात करते हुए पवेलियन की इंचार्ज रिया सिंह ने बताया कि इस नुमाइश में देही इलाकों में नाफिज की गई सभी सरकारी स्कीमों को पेश किया गया है।
यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के थ्रू जितनी योजनाएं पब्लिक के लिए गांव में की गई हैं वो सब देखने को मिलेंगी। उनके ऊपर जितने भी हम प्रोग्राम्स योजना दिखा सकते थे स्कीम्स दिखा सकते थे वो हमने कोशिश की है कि हम यहां पे दिखा सके।
पवेलियन आने वाले एक शख्स संदीप ने कहा कि इस नुमाइश में देहात की असल सकाफत को मौसी अंदाज से पेश किया गया है।
एक गांव की जो जिस व्यवस्थित तरीके से सरकार के द्वारा अपने नए नए योजनाओं के थ्रू जो लागू करा के गांव का डेवलपमेंट किया जा रहा है उन सारी चीजों को हमने इन छोटी सी जगह में बहुत अच्छे से देख पाया है।
تعلیم سے لے کر ہنر کی تربیت اور بنیادی ڈھانچے سے لے کر روزگار پیدا کرنے اور رہائش کی سہولیات سمیت اس نمائش میں دیہی آبادی کی معاشی اور سماجی جامع ترقی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پریاگ راج سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع انتظامیہ آج لال درمن سرمائی فیسٹیول 2025 کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس رنگا رنگ تقریب کا انعقاد ضلع انتظامیہ اور محکمہ سیاحت اور آرمی تیجس ایک پہل فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔ فیسٹیول کا آغاز قومی ترانے سے کیا جائے گا، جس کے بعد ایک ثقافتی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ فیسٹیول کو مزید پرجوش بنانے کے لیے ترنگے کی ایک پرچم ریلی کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
فیسٹیول میں مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی، جن میں گلوکاری مقابلے، ثقافتی پروگرام، محکمہ جاتی اسٹالز، کھیل کود پروگرام، روایتی ڈاکو رقص، مقامی آرٹ کی نمائش اور مقامی پکوانوں کے اسٹالز شامل ہیں۔ فیسٹیول میں شجرکاری پروگرام اور حفظان صحت کے کیمپ بھی منعقد کیے جائیں گے۔ اس دوران میلے میں آنے والے شائقین کی سہولیات کے لیے صفائی ستھرائی، پینے کے پانی، لال درمن سڑک کی بحالی، رضاکاروں کے نقل و حمل کے لیے بسوں کی تعیناتی کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں مشن شکتی آنگن واڑی اور پوشن 2.0 کی بہتری کے لیے 338 آنگن واڑی مراکز کو منظوری دی ہے۔ ان بہتر شدہ آنگن واڑی میں ایل ای ڈی اسکرینز، پانی کو صاف ستھرا بنانے کے پلانٹ، پوشن واٹیکا اور سیکھنے کا ساز و سامان مہیا کرایا جائے گا، تاکہ بچے اور ماؤں سے متعلق خدمات کو وسعت دی جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی پیر سے فرانس اور امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ اس دورے میں وہ مصنوعی ذہانت، اے آئی، دفاع، تجارت اور اہم شراکت داری پر توجہ مرکوز کریں گے۔ پیرس میں وہ فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں کے ساتھ اے آئی ایکشن سمٹ کی مشترکہ صدارت کریں گے، جس میں مصنوعی ذہانت کے اخلاقی نظام اور عالمی ضابطی جاتی فریم ورکس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکہ میں ویزا کے حامل اور گرین کارڈ کے منتظر بھارتی طلبہ اور پیشہور افراد کو ایک بڑی راحت ملی ہے۔ سیاٹل میں ایک وفاقی جج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر پر غیر معینہ مدت کے لیے روک لگا دی ہے، جس میں پیدائش کی بنیاد پر شہریت دینے کے حق کو ختم کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ عدالت نے اس آرڈر کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب ٹرمپ آئین کے ساتھ سیاسی کھلواڑ کرتے ہوئے قانون کی بالادستی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ڈسٹرکٹ جج جان کوفنر کا یہ فیصلہ امریکی قانون میں تبدیلی کرنے کی صدر ٹرمپ کی کوششوں کے لیے دوسرا بڑا قانونی جھٹکا ہے۔ اس سے پہلے میری لینڈ میں ایک وفاقی جج نے اسی طرح کا ایک فیصلہ دیا تھا، جب امیگریشن کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی جا رہی تھی۔ جج نے زور دے کر کہا کہ اگر حکومت پیدائش پر مبنی شہریت کے حق کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اسے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ٹینس میں مایا راجیشورن ممبئی میں ایل این ٹی ممبئی اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 15 سالہ مایا نے کوارٹر فائنل میں جاپان کی کھلاڑی کو 6-4, 3-6, 6-2 سے ہرایا۔ اب وہ سنگلز میں بھارت کی محض واحد کھلاڑی رہ گئی ہیں اور آج سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ کی کھلاڑی سے ہوگا۔ دلی اسمبلی کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ بی جے پی ابھی تک 27 سیٹوں پر آگے ہے، عام آدمی پارٹی 19 سیٹوں پر اور کانگریس 1 سیٹ پر آگے ہے۔ انڈین سپر لیگ فٹ بال میں شیلانگ میں کھیلے گئے ایک میچ میں ممبئی سٹی ایف سی نے نارتھ ایسٹ یونائیٹڈ ایف سی کو 2-0 سے ہرایا۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی قومی راجدھانی میں 19 مرکزوں پر جاری ہے۔ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت شمسی بجلی میں 100 گیگا واٹ کے تاریخی سنگ میل کو پار کر گئی ہے۔ کابینہ نے صفائی کرمچاریوں کے لیے قومی کمیشن کی مدت میں 3 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کے فیڈرل جج نے سیاٹل میں پیدائش کی بنیاد پر شہریت نہ دینے سے متعلق ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر پر روک لگا دی ہے، جس سے بھارت کے ویزا کے حامل افراد کو راحت ملی ہے۔ ٹینس میں 15 سالہ مایا راجیشورن ڈبلیو ٹی اے ممبئی اوپن کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اور انڈین سپر لیگ فٹ بال میں شیلانگ میں ممبئی سٹی ایف سی نے نارتھ ایسٹ یونائیٹڈ ایف سی کو ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔